इशिका वसुधा के कमरे में उनके साथ थी। वहीं अभिमन्यु को ओशन यूनिवर्सिटी में आज जो भी ड्रामा हुआ था उसके बारे में पता चला था। कॉलेज में ड्रामा तो हुआ ही था, साथ में कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर लोग इशिका के बारे में काफी बुरे कमेंट कर रहे थे। अभिमन्यु नहीं चाहता था कि इशिका उन सभी बुरे कमेंट्स को पढ़े। जब इशिका अपना मोबाइल हाथ में लेने लगी तो अभिमन्यु जल्दी से गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर वसुधा और इशिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अभिमन्यु ने एक झटके में इशिका का हाथ छोड़ दिया था। वसुधा ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, कुछ हुआ है क्या लड़के, जो इस तरह भाग कर आए हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं दादी, अभिमन्यु हड़बड़ाकर बोला। फिर उसने इशिका की तरफ देखकर कहा, मिस सिंघानिया, बाहर मौसम काफी अच्छा हो रहा है, क्या आप कुछ देर के लिए दादी को बाहर वॉक के लिए ले जाएंगी? इशिका ने एक नज़र बाहर की खिड़की की तरफ देखा तो मौसम वाकई काफी अच्छा था। इशिका ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने नर्स की हेल्प से वसुधा को व्हीलचेयर पर बिठाया तो इशिका ने बिल्लू को पकड़ लिया था। वैसे भी बिल्लू को भी वॉक पर ले जाने का टाइम हो गया था। ऐसे में वसुधा के साथ में आने पर इशिका के दो काम एक साथ होने वाले थे। नीचे गार्डन में आने के बाद उन्होंने वसुधा को एक चेयर पर बिठाया। इशिका वहां खड़ी बिना मन के इधर उधर देख रही थी। उसके दिमाग में अभी भी उस किताब की बातें चल रही थी जो उसने कुछ देर पहले पढ़ी थी। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई। वो अभिमन्यु था। उसने कहा, मिस सिन्हानिया, क्या आप ऑनलाइन आती हैं? मेरा मतलब है कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर कितना टाइम स्पेंड करती हैं? अभिमन्यु के कहते ही इशिका ने उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु ने इस वक्त नेवी ब्लू सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। अभिमन्यु की नजरें सामने की तरफ थीं तो इशिका को लगा कि वो बस हल्की फुल्की बातचीत करना चाह रहा है। मुझे सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है, ये बस वेस्ट ऑफ टाइम है, इशिका ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने सिर हिलाया, फिर वो वसुधा को देखने लगा था। इतने कम वक्त में इशिका ने अभिमन्यु के बारे में इतना तो जान लिया था कि वो काम को अपना ज्यादा टाइम देता था, बाकी उसे बातचीत करना कम पसंद था। इशिका को लगा कि अभिमन्यु आगे उसे कुछ नहीं पूछेगा। अभिमन्यु ने कुछ पल रुककर कहा, आजकल लोग काफी इनसेंसिटिव हो गए हैं, वो अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उन अनजान लोगों के ऊपर निकालते हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका सोशल मीडिया कमेंट्स बन गए हैं, लोग कुछ भी कहें आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभिमन्यु इशिका को पहले ही तैयार कर रहा था ताकि अगर गलती से भी वो कमेंट्स पढ़ें तो उसे बुरा महसूस ना हो। इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिमन्यु ये सब बातें उससे क्यों कह रहा है। वो उसे कुछ पूछती उससे पहले उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। इशिका ने देखा लक्ष्य का मैसेज आया हुआ था। लक्ष्य ने लिखा था, ऐसा करना कि तुम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलकर मत देखना, वहां स्टूडेंट तुम्हारे बारे में काफी बुरी बातें कर रहे हैं, वो बस रटी रटाई चीजें बोल रहे हैं जबकि सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। मैसेज पढ़ने के बाद इशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अब उसे समझ आ गया था कि अभिमन्यु उसे वो सब क्यों बोल रहा था। इशिका ने अपना मोबाइल बंद किया और फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर राजवंश, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, किसी के बोलने से क्या होता है, मैं सबको जाकर समझा तो नहीं सकती ना कि मैं कौन हूँ। इशिका का जवाब सुनकर अभिमन्यु थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। जब उसने महसूस किया कि उसकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि उसे इशिका की फिक्र है तो अभिमन्यु ने तुरंत कवर करते हुए कहा, मैं बस दादी के लिए परेशान हूँ, अगर आप अपसेट हुई तो आपको देखकर वो भी परेशान हो जाएगी। अभिमन्यु की बात सुनकर इशिका हल्का सा हंसती। जब भी वो वसुधा का नाम लेकर बहाना बनाता था तो उसे हंसी आने लगती थी, जबकि उसके खुद के दिल में इशिका की परवाह थी। इशिका के हंसने पर अभिमन्यु को और भी ऑकवर्ड फील हुआ। उसने जल्दी से कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी दादी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा, अपने लिए नहीं कह रही हूँ, दादी आपको नहीं देखोगी तो परेशान हो जाएगी ना, आखिर ये सब उन्हीं के लिए तो है, इशिका ने जानबूझकर अभिमन्यु को परेशान करने के लिए कहा। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और फिर वहां से चला गया। ऊपर रूम में आते ही उसने पृथ्वी से कहा, मंडे को मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। लेकिन सर, वो एक इंटरनेशनल मीटिंग है और क्लाइंट काफी टाइम से उसका वेट कर रहे थे, पृथ्वी ने जल्दी से कहा। उसका जवाब सुनकर अभिमन्यु तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था तो वो तुरंत बोला, मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। पृथ्वी दूसरी तरफ आ गया। मीटिंग उसने कैंसिल तो कर दी थी लेकिन वो अभिमन्यु को शक भरी निगाहों से देख रहा था। वो अपने मन में बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंडे को सर सबके सामने मिस सिंघानिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने वाले हैं? वो उस लड़की के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? पहले ही कंपनी में उनके काफी सारे दुश्मन हैं। जब से उन्होंने कंपनी का सारा काम संभाला है उसके बाद लोगों का बस नहीं चलता, वरना वो उन्हें कब का हटा देते। ऐसे में उनकी इस हरकत पर कहीं वो गुस्सा ना हो जाए।
पृथ्वी कोयशिका पर गुस्सा आ रहा था। उसने थोड़े टाइम पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन अभिमन्यु की मुसीबतें उसके ज्वाइन करने के बाद बढ़ गई थीं। नक्श ने इतनी मुश्किल से डॉक्टर मर्चेंट को राजवंश एम्पायर के लिए हायर किया था, पर उसकी वजह से डॉक्टर मर्चेंट भी नाराज होने वाले थे। पृथ्वी मन ही मन बोला, अगर सर ने सबके सामने मिस सिंघानिया का फेवर किया तो मैं उन्हें जरूर रोकूंगा, चाहे इसके लिए वो मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं उनकी रेपुटेशन को दांव पर नहीं लगने दूंगा। वहीं इशिका कुछ देर बाद मिसेस राजवंश के साथ वापस ऊपर आ गई थी। उसने देखा पृथ्वी उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। जल्द ही मंडे आ गया था। इशिका आज की मीटिंग के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने खास आज के लिए व्हाइट कलर का ऑफिस सूट पहना था। बालों को मैसी पौनी में बांधकर हल्का मेकअप करने के बाद वो काफी खूबसूरत लग रही थी। इशिका ऑफिस के लिए निकल रही थी तभी उसके पास दिशांक का मैसेज आया। दिशांक बोला, बॉस मैंने गोवा में लैंड कर लिया है और मैं टाइम से राजवंश एम्पायर पहुंच जाऊंगा। डोंट वरी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। हमेशा की तरह इशिका अभिमन्यु के साथ राजवंश एम्पायर पहुंची। जैसे ही इशिका गाड़ी से निकलकर बाहर जाने लगी, अभिमन्यु ने सीरियस वॉइस में पूछा, क्या आज दिशांक राठौर टाइम पर राजवंश एम्पायर पहुंच पाएगा ना? अभिमन्यु को इशिका की परवाह हो रही थी, क्योंकि आज की मीटिंग में सभी इंपॉर्टेंट मेंबर्स इकट्ठा होने वाले थे। वो नहीं चाहता था कि सबके सामने इशिका की इंसल्ट हो। हाँ, लग तो यही रहा है, इशिका ने बेपरवाही से जवाब दिया। अभिमन्यु ने थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे कहा, एक्चुअली मेरे पास दिशांक राठौर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं मीटिंग के बाद तुम्हें उस बारे में बताना चाहता हूँ। अभिमन्यु ने डिसाइड कर लिया था कि वो दिशांक के सच के बारे में इशिका को बता देगा। बाद में हर्ट होने से अच्छा है कि वो अभी सच जानने के बाद थोड़ी तकलीफ झेल ले। ठीक है, फिर मीटिंग के बाद मिलते हैं, इशिका ने शांत लहजे में जवाब दिया। इशिका ने अभिमन्यु को बाय कहा और फिर वो लिफ्ट के पास आ गई। उसने देखा लिफ्ट के पास कुछ लोग आपस में फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़की ने कहा, क्या तुमने सुना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर किसी ने एक प्रोजेक्ट चोरी कर लिया था? और इतनी हिम्मत किसने दिखाई है? पकड़ा गया तो बहुत बुरी सजा मिलेगी। भूल गया था क्या वो? उसके पास खड़ी दूसरी लड़की ने कहा, अरे कोई नई इंटर्न आई है, उसने ऐसा किया है। अब इतनी हिम्मत तो वही दिखा सकता है जिसके बड़े बड़े कनेक्शंस हों। सुना है सिफारिश के दम पर ऑफिस में आई है, उनके ग्रुप में खड़े एक लड़के ने कहा।
उसकी बात सुनकर पहली लड़की ने हैरानी से पूछा, किस तरह के कनेक्शन की बात कर रहे हो तुम? ये राजवंश एम्पायर है, पता है ना, यहाँ कनेक्शंस काम नहीं आते हैं। लड़का साफ तौर पर किसी का नाम नहीं ले सकता था। उसने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा, जो यहाँ सबसे ऊपर है उसी के कनेक्शन के दम पर। तभी उसे आते ही सीधा रोहन के ग्रुप में भेज दिया गया, जबकि रोहन अपने ग्रुप में हर किसी को नहीं लेते हैं। वहां मौजूद हर एक शख्स समझ गया था कि वो लड़का अभिमन्यु की तरफ इशारा कर रहा था। उस पर उस लड़की ने दबी आवाज में कहा, हाँ उनके आगे तो किसी के बोलने की कोई हिम्मत नहीं है, जब से आए हैं सबको लाइन में लगा रखा है, कई लोगों को काम से निकाल दिया। क्या उस लड़की के साथ उनके कोई पर्सनल रिलेशन है? अपने रिलेशन के चलते वो उसे खुलेआम सपोर्ट तो नहीं करने वाले? अगर ऐसा हुआ तो उन्हें तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। हाँ उसे कौन रोकेगा, आखिर बिगड़ा हुआ बच्चा जो है, पता है मैंने सुना था कि जब वो बच्चा था तब काफी ज्यादा गुस्सैल और घमंडी टाइप का था, उसे उसकी दादी ने बिगाड़ा है। अब इतने सालों बाद लौट आए तो सब पर वही एटीट्यूड झाड़ रहा है। ग्रुप में मौजूद दूसरी लड़की ने सिर हिलाकर कहा। वो सब अभिमन्यु की गॉसिप करने लगे थे। इशिका चुपचाप खड़ी उनकी बातों को सुन रही थी। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि लिफ्ट नहीं आई थी। तभी अचानक एक और लड़के ने कहा, मुझे तो अफसोस होता है कि ये हाई पोजीशन नक्श राजवंश को क्यों नहीं मिली, वो तो इतना टैलेंटेड है और उसका नेचर भी काफी अच्छा है, वो अपने पिता नकुल राजवंश की तरह अच्छे दिल का है। हाँ मिस्टर नक्श राजवंश ने ही डॉक्टर मर्चेंट को यहाँ काम करने के लिए तैयार किया था, अब इस बात के लिए उनकी कोई तारीफ नहीं करेगा क्योंकि वो बड़ी पोजीशन पर नहीं है, एक लड़के ने कहा। इशिका उनकी बातों से काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। उसे नहीं लगा था कि बात उससे होते हुए अभिमन्यु तक पहुंच जाएगी। इन लोगों के पास इतनी सारी डिटेल्स कैसे पहुंची? जरूर कोई इन्हें भड़का रहा है, लेकिन कौन हो सकता है, इशिका ने अपने मन में कहा और फिर उन लोगों को देखने लगी। अचानक उसकी नज़र एक लड़के पर जाकर ठहर गई जिसने इस टॉपिक को शुरू किया था। वो ग्रुप टू का असिस्टेंट लीडर था जिसका नाम ओजस गुप्ता था। अब उसे समझ आ गया था कि इस मामले को कौन हवा दे रहा था। ओजस नक्श का चमचा था। इशिका को इस बारे में दिशांक ने जानकारी दी थी कि नकुल राजवंश और नक्श अपनी खोई हुई इज्जत को फिर से पाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे भी अभिमन्यु को ऑफिस में ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, ऊपर से वो अंदर ही अंदर सबको अभिमन्यु के खिलाफ भड़का रहे थे। राजवंश एम्पायर की हेड पोजीशन अभिमन्यु के पास थी जिसे नकुल राजवंश हासिल करना चाहता था। इशिका अब और शांत नहीं रह सकती थी, वो इनके पास गई और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बुराई करने तक तो ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम जिसकी बुराई कर रहे हो वो इस कंपनी का हेड है। कहीं आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है ना? किसी ने सुन लिया तो तुम सबको भी निकाल देंगे। इशिका की बात सुनकर उन सबके चेहरे पर घबराहट के भाव थे और वो इधर उधर कैमरा देखने लगे। कैमरा मौजूद जरूर था लेकिन थोड़ा दूर लगा हुआ था, तो सबने राहत की सांस ली।
तुम कौन हो? एक लड़की ने उसे घूरते हुए पूछा। ओजस इशिका की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, इसका इंट्रोडक्शन मैं तुम लोगों से करवाता हूँ। यही वो नई इंटर्न है जिस पर चोरी करने का इल्जाम लगा है। वैसे भी सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, चाहे इसको कोई कितना भी सपोर्ट कर ले, लेकिन इसे सजा मिलकर रहेगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बेशर्मी से ऑफिस चली आई। तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा मैं, मिस सिंघानिया। ओजस के सब बताते ही ग्रुप के लोग उसे गुस्से में घूरा, सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे और इशिका को एक चोर की नजरों से देखने लगे। उनमें से एक लड़की बोली, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिग बॉस के दम पर उछलना बंद करो, उनके साथ तुम्हारी करीबी भी कुछ नहीं कर पाएगी। उन सबके इतना कहने के बाद भी इशिका के चेहरे और आंखों में बिल्कुल डर नहीं था। वो बेहिचक बोली, अच्छा तो मैं मिस्टर राजवंश के करीब हूँ? हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? ओजस बोला, तुम उनकी खास हो, तभी तुम्हें आते ही इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई, जबकि तुम सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट हो। हमने देखा था कि मिस्टर पृथ्वी चौहान तुम्हें खुद वहां छोड़ने के लिए गए थे। अक्सर मैंने तुम्हें मिस्टर राजवंश के साथ आते जाते भी देखा है। क्या अब भी तुम इस बात से इनकार करोगी कि तुम्हारे उनके साथ कोई रिश्ते नहीं है? ओजस के बाद एक लड़की ने कहा, तुम्हारे मिस्टर राजवंश के साथ कितने भी क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मिस्टर नक्श राजवंश बहुत मुश्किल से डॉक्टर मर्चेंट को यहाँ काम करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो नाराज हो जाएंगे और फिर कंपनी को बहुत नुकसान होगा। अगर डॉक्टर मर्चेंट नाराज होकर चले गए तो मिस्टर राजवंश भी तुमसे नाराज हो जाएंगे, फिर वो तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, हम लोग गलत समझ रहे हो, मैं मिस्टर राजवंश को जानती जरूर हूँ, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने मुझे हायर किया है, इस बात का उन्होंने तो अनाउंसमेंट नहीं करवाया। अगर मैं इतनी ही खास होती तो वो सबको बताते, पहले कुछ नहीं बताया तो अब मेरा सपोर्ट क्यों करेंगे? उन सब ने इशिका को अजीब नजरों से देखा। तभी लिफ्ट आ गई थी। उन सबका ध्यान अपनी बातों में इतना लगा हुआ था कि उनका ध्यान इस तरफ भी नहीं गया कि पृथ्वी और अभिमन्यु ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और उसका क्या नतीजा हो सकता था। कहानी पसंद आ रही है तो समीक्षा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समीक्षा करके जाइएगा।